مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم سامعین، آج کی راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ شہناز عزیز حاضر ہے، اور آج ہم بات کریں گے انڈیا کی ریاست آسام میں این آر سی سے متعلق، کہ جب یہ فہرست تیار ہوئی اور اس کے بعد تقریباً 19 لاکھ باشندوں کی شہریت مشکوک ہو گئی، تو اس پر اب قانونی کیا کاروائی ہو سکتی ہے، کیا ایکٹیوسٹ جو ہیں کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ سیاسی تنظیمیں کیا کام کر رہی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریاست آسام میں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، ہم نے دعوت دی ہے بی جے پی کے اسپوکس پرسن، وہ ہمارے پروگرام میں کچھ دیر بعد شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے کئی ایسے ایکٹیوسٹ لیے ہیں جو انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں یا قانون کے ماہرین ہیں، سپریم کورٹ کے لوئر ہیں، کیونکہ یہ جو لسٹ ہے، یہ جو تیار کی گئی فہرست، یہ سپریم کورٹ کی ہدایت پر ہی تیار کی گئی تھی۔ تو ہم ان سب چیزوں پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت نتاشا موجود ہیں۔ نتاشا بٹوار، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ نتاشا کو میری آواز نہیں آ رہی؟ اچھا، تو سامعین، اس سے پہلے کہ ہم آج کا پروگرام شروع کریں، ظاہر ہے کہ اس پورے معاملے میں ایک جو مضبوط موقف ہے وہ کانگریس پارٹی کا بھی ہے۔ کانگریس پارٹی سب سے بڑی اپوزیشن کی پارٹی ہے۔ تو لیجیے ہم بات کرتے ہیں میم افضل سے، وہ ہمارے اس پروگرام میں، یعنی لائیو پروگرام میں شامل نہیں ہے، لیکن ہم نے ان سے گفتگو ریکارڈ کی ہے، وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنے باقی مہمانوں کو لیں گے۔ جی اسر صاحب، اگر آپ میم افضل کی ریکارڈنگ سنوائیں۔ کانگریس پارٹی 15 برس تک برسر اقتدار تھی آسام میں، تو یہ جو این آر سی کا ایشو ہے، ایک طرح سے اس میں جو مسئلہ تھا، اس کا آغاز تو راجیو گاندھی صاحب کے زمانے میں ہوا تھا نا، تو اس کی کیا وجوہات ہیں، کہ اس کی تاریخی پس منظر کیا ہے؟
دیکھیے، ایک زمانے میں آسام کے اندر ایک اسٹوڈنٹ تحریک چل رہی تھی، بہت بڑی تحریک تھی، اور آسام میں بہت ڈسٹربینس ہوا تھا، تو ان سے جو بات چیت کی گئی تھی، اس وقت سب سے بڑی شکایت یہی تھی کہ کافی بڑی تعداد میں غیر ملکی جو ہیں وہ آسام میں آ گئے ہیں، خاص طور پر بنگلہ دیش سے، اور ان کو نکالا جانا چاہیے یا کم سے کم ان کی نشاندہی ہونی چاہیے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے ان وقت حالات کے تحت آسام ایکارڈ کر کے ایک معاہدہ کیا گیا تھا، اس میں غالباً یہ بھی چیز طے ہوئی تھی کہ این آر سی جو ہے وہ لاگو کی جائے گی یہاں آسام کے اندر۔ اور ایکچولی این آر سی تو بنیادی طور پر نیشنل لیول کے لیے تھی، لیکن یہ صرف آسام کے لیے کیا گیا تھا۔ بعد میں اس میں کافی پریشانیاں آئیں، اور پھر اس میں سپریم کورٹ کو بھی مداخلت کرنی پڑی، اور سپریم کورٹ نے پھر اس کے اندر آرڈر کیا، اور یہ دیکھ ریکھ میں، سپریم کورٹ کی مانیٹرنگ میں یہ کیا گیا۔ اس لیے کہ اس سے پہلے اس کے اندر کافی بڑی تعداد میں شکایت آئی کہ غلط لوگوں کو اس میں این آر سی میں جو ہے نکال دیا گیا ہے رجسٹر سے، تو یہ شکایت تھی، اور اس شکایت کو سپریم کورٹ نے سنا اور محسوس کیا، اور سپریم کورٹ کی ہدایت پر یہ پھر سپریم کورٹ کی نگرانی کے اندر یہ جو این آر سی کا پورا کام ہے وہ چل رہا تھا۔ اور اس میں سرکار کا اور حکومت کا نہ صرف یہ کہ بہت بڑا وقت خرچ ہوا، کافی پیسہ بھی اس میں، تقریباً کہا جاتا ہے 16,000 کروڑ روپیہ اس میں خرچ ہوا، اور اس کے نتیجے میں لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی جو اس کا کچھ ایک سیاسی فائدہ دیکھ رہی تھی، اور اس کو یہ امید تھی کہ اس کے اندر بڑی تعداد میں ایسے لوگ آ جائیں گے جو خاص طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور بنگلہ دیشی ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا، بلکہ الٹا ہوا۔ تو 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر آئے ہیں، اور اس میں ہاں بنگالی جو ہندو ہیں وہ بھی ہیں اس کے اندر، مسلم بھی ہیں، تو اس میں، لیکن یہ بنیادی سوال ہندو مسلم کا ہے ہی نہیں، یہ بنیادی طور پر ایک ہمارے لیے، ملک کے لیے ایک نیشنل ایشو بنا کر کے بی جے پی نے پیش کیا، اور اس کو کافی الیکشن کے اندر بھی استعمال کیا۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ کوئی بھی اگر غیر ملکی ہے تو اس کی نشاندہی ہونی چاہیے، اور اس کو لیگل طریقے سے واپس بھیجنا چاہیے۔ لیکن ابھی تک اس سارے معاملے میں کچھ یک طرفہ بیان بازی جو ہے وہ چلتی بھی دکھائی دیتی ہے۔ ابھی حال ہی میں نیا ڈیولپمنٹ یہ ہوا کہ کہا گیا، پہلے بھی کہا گیا تھا کہ ہم پورے ملک میں اس کو NRC को लागू करेंगे। हरियाणा जैसी स्टेट में वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया कि हम अपने यहाँ NRC लागू करेंगे, जबकि हरियाणा के अंदर आज तक कभी मुल्की गैर मुल्की का नाम पर कभी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, ना कोई ऐसा वाक्य आया, ना कोई ऐसी डिमांड कभी की गई। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया क्या हम जरूरत पड़ी तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो कि एक बहुत बड़ी स्टेट है जिसकी आबादी 21 करोड़ है वहां भी हम NRC लागू कर सकते हैं।
आपने कहा कि जिस वक्त कांग्रेस लाई थी NRC आसाम के अंदर, उस वक्त ये बात हो रही थी कि मुल्क भर में इसे लागू किया जाए, तो इसकी क्या वजूहत थी? आपने इसको कौमी सतह पर क्यों नहीं शुरू किया किसी एक स्टेट के बजाय?
देखिए उस वक्त कहीं ये NRC रखा गया था कि नेशनल रजिस्टर बनाया जाएगा, लेकिन इसकी जरूरत कभी भी कहीं महसूस इसलिए नहीं की गई कि सिर्फ ये आसाम में ही मसला था, उसके अलावा कहीं नहीं था। तो जब एक ही स्टेट में था तो उसको जाहिर है कि कांग्रेस ने नहीं सोचा था कि इसको पूरे मुल्क के अंदर लागू करने की आज भी जरूरत है। और मैं तो समझता हूँ कि आज भी शायद जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मौजूदा सरकार चाहे हमारे यहाँ कुछ आम तौर पर मुसलमानों के अंदर ये सरासीमेगी फैलती है और ये समझते हैं कि वो NRC उनके खिलाफ है, मैं समझता हूँ कि ये सोच बिल्कुल गलत है। ये ना हिंदुओं का मसला है ना मुसलमानों का मसला है, ये बुनियादी तौर पर गैर मुल्की मसला है। और इसको जब भी हल करे कोई सरकार भी हो, उसको ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट जो है इंसानी बुनियादों पर इसका इसको आगे टेकअप करना चाहिए। अगर कुछ लोग आए भी हैं तो उनकी सरकारों से बात करके उनको वापस किया जाए या जो भी तरीका इख्तियार करें वो होना चाहिए।
तो ये आवाज़ थी मीम अफसर साहब की, जो कांग्रेस के कौमी तर्जुमान हैं और इसके अलावा ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं और सफारत के अहदों पर फायज हैं। हमारे साथ नताशा बर्दवार मौजूद हैं। नताशा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। और इस वक्त मैं कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान किससे का सुनवा रही थी रिकॉर्डिंग, और इसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है कि आपको तो मालूम ही है कि आसाम में हुकूमत तो BJP की है, लेकिन सबसे बड़ी जो जमात है वो कांग्रेस है। और फिर एक बात ये भी है कि ये जो मसला था ये शुरू जब हुआ था तो उस वक्त कांग्रेस बरसर इक्तदार थी, जो 15 साल तक आसाम में बरसर इक्तदार रही। तो थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि इस वक्त जो ये फहरिस्त तैयार हुई और फिर उसमें अपील का हक है कि लोग अपील करने जा सके, तो अब इस वक्त क्या सूरत हाल है? 120 दिन की मोहलत थी, तो अब मौजूदा सूरत हाल क्या है? कितने लोगों ने अपील की है अपना रजिस्ट्रेशन ना होने के खिलाफ, यानी अपना नाम ना होने के खिलाफ?
अभी तो गवर्नमेंट ने अपील की प्रोसेस क्या रहेगी ये भी अनाउंस नहीं किया है।
अच्छा।
और 120 दिन उस दिन से शुरू होते हैं जब लोगों के पास नोटिस आएगा रिटर्न में कि उनका नाम NRC में आया है या नहीं आया है। अभी लिस्ट निकली है उसको देख के लोगों को पता है कि उनका नाम है या नहीं है, लेकिन उनको ऑफिशियल नोटिस आएगा और उसके बाद 120 दिन शुरू होंगे। और अभी हम लोग खुद क्योंकि एक मीडिया कम्युनिटी मीडिया ग्रुप हैं तो हम लोग चाह रहे थे कि हम एक वीडियो बनाएं जिसमें कि हम सारी प्रोसेस डालें ताकि जो लोग लिटरेट नहीं हैं, जो कंप्यूटर से एक्सेस नहीं कर सकते वेबसाइट, वो भी उन्हें भी पता चले कि अपील प्रोसेस क्या है। लेकिन अच्छा। ये इंफॉर्मेशन अभी पब्लिक डोमेन में है ही नहीं कि ये पता है कि फॉरनर्स ट्रिब्यूनल जाना होगा लेकिन कौन से कागजात लेके जाने हैं वगैरह, ये डिटेल अभी नहीं आए हैं।
अच्छा, तो हमारे साथ बहुत ही एक नुमाया मुमताज मकाम रखने वाले ह्यूमन राइट्स में और लॉ में प्रशांत भूषण साहब मौजूद हैं, और मेरे ख्याल है सबसे ज्यादा वजह से यही बता सकेंगे हमें, क्योंकि ये मामला जो है बुनियादी तौर पर तो सुप्रीम कोर्ट का ही है NRC का। तो भूषण साहब खुश आमदेद प्रोग्राम में। हमारे साथ आपके अलावा इस वक्त नताशा मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान मीम अफसल भी हमारे साथ थे जिनका रिकॉर्डेड हमने सुना है। मैं से मुतालिक जो सवाल आते हैं जब BJP के तर्जुमान हमारे साथ होंगे तो पूछूंगी, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में क्या सूरत हाल है, यानी क्या हुकूक हैं उन लोगों के लिए जिनके नाम इस लिस्ट में शामिल हैं?
तो अभी तक तो यही बोला गया है कि जिन लोगों के नाम इसमें NRC की लिस्ट में शामिल नहीं है उनको फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में अपील फाइल करनी होगी, और जब तक फॉरेनर्स और इनको उसके लिए 4 महीने का वक्त दिया गया है अपील फाइल करने के लिए, और ये कहा गया है कि जब तक फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल का फैसला नहीं होता तब तक उनके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं करी जाएगी। लेकिन फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल जिस तरह से काम कर रहे हैं यही बहुत बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज है, क्योंकि हम लोगों ने अभी एक पीपल्स ट्राइब्यूनल किया था इस पूरे एनआरसी प्रोसेस के ऊपर दिल्ली में कुछ दिन पहले, जिसमें कि फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल कैसे काम कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल में बयान आए कि पहली बात तो उनमें अब जज लोग नहीं हैं, उनमें अब 7 साल का किसी का एनरोलमेंट हो उस तरह के वकीलों को अपॉइंट कर दिया गया है जिनका कोई जुडिशियल एक्सपीरियंस नहीं है।
अच्छा।
रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को भी अपॉइंट कर दिया गया है और इनको एक एक साल की नियुक्ति दी जाती है और उसके बाद उनका एक्सटेंशन इस पर निर्भर होता है कि सरकार उनके परफॉर्मेंस पर रिपोर्ट दे और सरकार उनका परफॉर्मेंस सिर्फ इस आधार पर देखती है कि इन्होंने कितने लोगों को फॉरेनर डिक्लेयर किया।
अच्छा।
और दूसरी बात, अभी तक जितने केसेस उन्होंने निपटाए हैं उसमें से ये पाया गया कि 2/3 केसेस ऐसे हैं जिसमें बगैर उस जने को सुने हुए उन्होंने फैसला दे दिया, क्योंकि कई केस में नोटिस ही नहीं सर्व होता, कई केस में नोटिस सर्व होता है लेकिन वो आ नहीं पाता, तो एक्सपार्टी ऑर्डर से 2/3 केस डिसाइड किए गए। इनकी एक्सटेंशन इस पर निर्भर रहती है कि भाई ये लोग कितने ज्यादा लोगों को फॉरेनर डिक्लेयर करते हैं और इनको कोई जुडिशियल एक्सपीरियंस अब है नहीं, और अभी तक तो सिर्फ 100 ट्राइब्यूनल थे, अब वो कह रहे हैं कि 1000 ट्राइब्यूनल बनाए जाएंगे, तब तो मतलब और भी बदतर हालत हो जाएगी।
तो इसमें सारा जो इख्तियार है ये ट्रिब्यूनल कायम करने का वो गवर्नमेंट के पास है, इसमें कोई भी और दूसरे लोग शामिल नहीं है इस प्रोसेस में?
नहीं, ट्राइब्यूनल कायम करने का तो गवर्नमेंट के पास है, लेकिन वो कहते हैं कि हम हाईकोर्ट के कोई जज होते हैं उनसे उनके अप्रूवल लेकर इनकी नियुक्ति करते हैं।
अच्छा।
यानी कि हाईकोर्ट के कुछ जज अप्रूव करते हैं, लेकिन अब वो किस आधार पर, वो सिर्फ एक इंटरव्यू करते हैं उसके आधार पर कर देते हैं और ज्यादातर यही लग रहा है कि गवर्नमेंट के इशारों पर ही किया जाता है, कम से कम एक्सटेंशन तो गवर्नमेंट के ही जो उनका अप्रूवल होता है उसी के आधार पर दिया जा रहा है बाय एंड लार्ज।
तो अभी भूषण साहब, आपने पीपल्स ट्रिब्यूनल की बात की जो दिल्ली में आपने किया, तो उसमें कौन लोग, किन लोगों से बात की आपने, कौन लोग थे शामिल, असम से आए हुए लोग कौन से थे?
तो असम से बहुत सारे विक्टिम्स भी आए थे और जो कुछ लॉयर्स इन लोगों के साथ काम करते रहे हैं वो लोग भी आए थे, जैसे एक अमन वादूत करके एक लॉयर है वहाँ असम के जिन्होंने फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल पर बहुत काम किया है, उन्होंने आके डिटेल में इसका बयान दिया। मैंने भी एक असम डिटेंशन सेंटर्स का एक केस हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया हुआ है, उसमें भी एक एफिडेविट फाइल किया था कि भाई किस तरह से ये ट्राइब्यूनल्स काम कर रहे हैं, नोटिसेस किस तरह से दिए जाते हैं, नोटिस इस तरह से भेज दिया जाता है कि अमन वादूद और 37 और लोग, अब कौन 37 और लोग हैं, किसको कैसे पता लगेगा कि कौन 37 लोग हैं जिनके लिए ये नोटिस है? जाहिर है कि बहुत सारे लोग नहीं जाते क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनके नाम पर नोटिस आया हुआ है और फिर एक्सपार्टी ऑर्डर पास कर दिए जाते हैं।
तो मुझे मालूम है कि आप या जैसे कि नताशा हैं, आप लोग बहुत ही एक्टिव हैं इन पूरी चीज़ों में और लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, बल्कि मुझे कुछ एक नौजवान खातून हमारे साथ हैं, मासूमा खातून इनका नाम है, गुवाहाटी से। मासूमा जो है वो भी काम कर रही हैं एक लोगों तक पहुंचाने में मालूमात कि किस तरह वो दरख्वास्त दे सकते हैं, फिर उनको क्या चीज़ें भरनी होंगी और क्या उन्हें कानूनी मदद मिल सकती है। हम थोड़ी सी उनसे पूछते हैं, फिर इससे मुतालिक जो सवाल होंगे वो मैं नताशा सर आपसे पूछना चाहूँगी। मासूमा, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। तो मुझे अब आप ये बताइए, क्योंकि आप आम लोगों, एक ग्रास रूट लेवल पे आप काम कर रही हैं, लोगों में जाती हैं, तो क्या आपको सुनने को मिलता है कि जो लोग गए वहां तक अपनी दरखास्तें लेके या जिनके मुकदमों के फैसले हुए या जिन्हें अभी दरखास्तें देनी है, तो कोई मदद उन्हें मिल रही है सरकारी तौर पर या वो आप ही जैसे एक्टिविस्ट जो हैं वो उनकी मदद कर रहे हैं या वकील कोई जो कानूनी ह्यूमन राइट्स के कारकुन है?
सरकारी तौर पर अगर मदद मिल भी रहा सरकार अगर कोशिश कर भी रहा है तो मतलब जमीनी तौर पे उन लोगों को मदद नहीं मिल रहा है। हमें जो देखने को मिल रहा है वो मतलब जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है या फिर कोई एनजीओ, ये लोग ही मतलब फील्ड पे काम कर रहे हैं
जी,
हमने जो देखा है।
तो आप लोगों के पास कोई ऐसा तरीका है कि आप सरकारी जो अहलकार हैं उन तक ये बात पहुंचा सकें, यानी उनसे उनको ये आपके बता सकें कि लोगों को ये दुश्वारियां हैं, कि ऐसा कोई कांटेक्ट बीच में मौजूद नहीं है?
सरकारी मतलब ऐसा है कि सरकारी तरीके से हम लोग अपील कर भी देते तो ये फायदेमंद नहीं रहता है। वो लोग कभी बोलते हैं कि हाँ हम लोग मदद करेंगे लेकिन बाद में नहीं करते हैं।
अच्छा अच्छा नताशा, मैं अब आपसे पूछूंगी कि देखिए शुरू में जब ये लिस्ट सामने आई थी तो बहुत ज्यादा ये एक मुसलमान मसला मालूम होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब तफसील सामने आई तो पता लगा कि इसमें गैर मुस्लिमों की तादाद ज्यादा है इन 19 लाख अफराद में। तो आप मुझे बताइए कि अब ये यानी इस वक्त क्या आपको नजर आता है, गवर्नमेंट का मौकिफ, बीजेपी की हुकूमत का मौकिफ क्या है उन लोगों के बारे में जिनकी शहरियत मंसूख हुई है?
इस तरह से ये सब नैरेटिव क्रिएट करने की बात है, किसने किस तरह की नैरेटिव क्रिएट किया है। एनआरसी टेक्निकली इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करके उनको उनके कंट्रीज में वापस भेजने के लिए शुरू किया गया, और क्योंकि इलीगल इमिग्रेशन असम में ज्यादातर बांग्लादेश से हुई है और बांग्लादेश से हिंदू भी आए हैं, मुसलमान भी आए हैं, लेकिन ज्यादातर जो असम की में जो टारगेट हुए हैं वो मुस्लिम बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो कि ना सिर्फ बांग्लादेश से ही नहीं इंडियन बंगाल से भी पिछले कई सालों से 100 साल से ऊपर से वहाँ सेटल होती आ रही है। तो जब हम लोगों से बात करते हैं जैसे मासूमा के साथ काम करने वाले अशरफुल, अब्दुल, अमन वदूद, तो इन लोगों से हम डायरेक्टली ये सुनते हैं कि हम चाहते हम एनआरसी के फेवर में हैं, हम चाहते हैं कि एक फ्री और फेयर एनआरसी लिस्ट बने ताकि दूध पानी अलग हो, और जिस डर से हमारी कम्युनिटी जी रही है कि पता नहीं किस दिन हम पर क्या लेबल लग जाए, वो डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जिसके कागजात ठीक है वो इंडियन है, जिसके नहीं है वो इलीगल इमिग्रेंट है। लेकिन क्योंकि प्रोसेस अपने आप में इतना करप्टेड है, जैसे कि प्रशांत भूषण जी ने अभी बताया कि इतना ज्यादा उसमें ओपेकनेस है, पता नहीं चलता कि क्यों एक ही फैमिली में एक भाई को डी वोटर करार कर दिया गया है, एक भाई को के पेपर जो है वो सेम बाप दादा के नाम है, सेम जमीन के पेपर हैं, लेकिन एक भाई इंडियन है दूसरे भाई को इलीगल इमिग्रेंट कह दिया गया है। तो इतना ज्यादा ये एंटी पुअर, एंटी उन लोगों के जो कि प्रिविलेजेस नहीं होल्ड करते, जिनके लिटरेसी रेट इतने लो हैं, जो गरीब हैं और जो कागजात नहीं निकाल सकते, उन लोगों के खिलाफ ऐसा लगता है कि सिस्टम जो है वो प्रोसेस जो है वो उनके उनके खिलाफ एक तरह से है, और अब जो रिजल्ट्स आए हैं इनसे कोई खुश नहीं है और खुश हो भी नहीं सकता। वो इतने ज्यादा उनमें डिस्क्रिपेंसीज हैं कि एक फैमिली में आधे लोग आ रहे हैं आधे नहीं आ रहे हैं, कि वो क्लियरली एक्यूरेट नहीं है। तो रिजल्ट्स ने कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट किया है, और जो उम्मीद थी मुसलमानों की भी और नॉन मुस्लिम्स की भी कि एक बार एनआरसी में नाम आ जाए, पूरी जांच हो जाए तो पता चल जाएगा कि कौन असम में रह सकता है और कौन नहीं रह सकता, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो एक तरह से किसी को भी फायदा नहीं हुआ इस प्रोसेस से।
तो जैसा कि बात हो रही थी मीम मफजल साहब से, जो कांग्रेस पार्टी के हैं, मैं नताशा आपको, हम दोबारा से फोन मिला रहे हैं, आपके फोन में काफी कुछ गड़बड़ है, तो हम आपको एक मिनट फौरी तौर पे दोबारा असफर साहब आपको फोन कर रहे हैं। मैं प्रशांत भूषण जी से ये बात पूछूंगी कि सिर्फ इस वक्त आसाम ही एक ऐसी रियासत है जहाँ NRC है, तो क्या भारत के किसी और इलाके में बाहर से लोग आके आबाद नहीं हुए, जैसे 71 के बाद या किसी भी जमाने में, या दर हकीकत आसाम ही एक ऐसी जगह है जहां इस तरह की आबादी है? प्रशांत भूषण जी, असफरजान, क्या प्रशांत जी का फोन कट गया है हमारा? तो उनको आवाज नहीं आ रही, मुझे उनकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, भूषण जी की आवाज नहीं आ रही। मासूमा, आप जब लोगों से बात करती हैं तो सबसे बड़ी मुश्किल आपको क्या नजर आती है लोगों की इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी? एक तो जाहिर है उनको ये है कि वो स्टेटलेस जैसे फील करने लगते हैं कि वो किसी भी मुल्क के शहरी नहीं, अगर उनका अपना मुल्क उन्हें कबूल नहीं कर रहा, अगर वो बाहर से नहीं आया और वो शुरू से रहते हैं, तो क्या सबसे बड़ी दुश्वारी आपको दिखती है उन लोगों की जिंदगी में इस वक्त?
देखिए नताशा मैम ने जो बोला है कि लिटरेसी रेट बहुत कम होता है इस कम्युनिटी में, अभी भी 25% लोग ही लिटरेसर है, तो आप ये इमेजिन कीजिए कि उन लोगों, ये पूरा कम्युनिटी को एनर्जी के जो इश्यूज है, जो टेक्निकल बातें हैं, ज्यादातर एजुकेटेड लोगों को भी इतना समझ में नहीं आता है, तो जो लोग अनएजुकेटेड है उन लोगों को ये बात और भी समझ में नहीं आता है, तो उन लोगों को पता नहीं होता है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो लोग किसी लोगों के ऐसा बहुत होता है कि लोगों के पास कागजात होके भी उन लोगों को पता नहीं होता है कि कौन सा कागजात सबमिट करना है कौन सा नहीं करना है, तो ये तो प्रॉब्लम आता है कि एजुकेशन की वजह से ये होता है, मतलब लोगों को पता नहीं होता है। दूसरे और एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि जिस कम्युनिटी के पूरा लोग सिर्फ 25% एजुकेटेड है, वहाँ जो वुमेन का लिटरेसी रेट है वो और भी कम है
जी।
लड़कियाँ थोड़ा बड़े होने से ही माँ बाप को यही परेशानी रहता है कि इसका शादी हो जाए, तो बहुत कम उम्र में ही लड़कियों को शादी करवा दिया जाता है, जिनकी वजह से लड़कियाँ बोर्ड का एग्जाम भी नहीं दे पाते हैं और वोटर लिस्ट में भी उनका नाम नहीं आता है, तो उनका क्या होता है, वो लोग जब NRC में वो एक डॉक्यूमेंट है कि लीगेसी सबमिट करना पड़ेगा और एक लिंकेज, जो जिसका लीगेसी अपने दिया है उसके साथ लिंकेज प्रूफ करने वाला कोई सर्टिफिकेट, यानी अगर मैं अपने पिताजी का लीगेसी यूज करती हूँ तो पिताजी और मेरे जो रिलेशन है वो एस्टैब्लिश करने के लिए भी एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जैसे कि मैं अपना बर्थ सर्टिफिकेट यूज कर सकती हूँ, बोर्ड सर्टिफिकेट यूज कर सकती हूँ।
अच्छा।
तो जो लड़कियों को पढ़ाई का मौका नहीं मिलता है, या फिर जब वोट देने का उम्र होता है, वोटर लिस्ट में नाम आने से पहले ही शादी हो जाता है, उनका ये प्रॉब्लम हुआ है कि वो लोग अपना पिताजी के साथ
मैं समझ गई कि उनका जाहिर है कि वो अलग से नहीं दे सकती। प्रशांत जी हमारे साथ हैं, उनसे मैंने पहले ही सवाल पूछा था मासूमा से। प्रशांत जी, इस वक्त जो NRC है वो गालबन सिर्फ आसाम ही एक ऐसी स्टेट है जहां पर NRC लागू हुई, तो अभी अभी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी ये ऐलान किया है, आमादगी जाहिर किया है कि वो अपने अपनी रियासतों में NRC के निफाज के लिए इसकी इब्तिदा करने को तैयार हैं, तो क्या आप इसकी कोई वजह नजर आती है आपको दूसरी रियासतों तक फैलाने की इसको, या ये कि इसकी जरूरत ही नहीं है हिंदुस्तान में?
जिस तरह से जो प्रॉब्लम्स आसाम में सामने आई हैं, आसाम में एक बात अच्छी हुई थी कि क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ, तो इस वजह से जो एक ये बहुत बड़ा फियर था कि ये प्रोसेस बिल्कुल कम्युनल होगा और इसमें मुसलमानों को खासकर बाहर रखा जाएगा, वो नहीं हो पाया
जी।
लेकिन क्योंकि ये जो NRC का प्रोसेस था, इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने थे और डॉक्यूमेंट्स भी ऐसे जो आम तौर पर गरीब आदमियों के पास नहीं होते, और उस उन डॉक्यूमेंट्स में भी अगर किसी में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, आपका नाम बंगाली है और उसको अगर अंग्रेजी में हिंदी में लिखा है तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई
जी।
तो उसकी वजह से भी आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया जाता था और आपको एनआरसी के बाहर कर दिया जाता था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो आसाम में भी आई जबकि सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर कर रहा था। अब अगर आप इस प्रोसेस को बाकी देश में करेंगे तो भाजपा जो चाहती है कि भाई किसी तरह से मुसलमानों को हिंदुस्तान में नॉन सिटीजन डिक्लेयर कर दो या उनको सेकंड क्लास सिटीजन्स बना दो, इसको हिंदू राष्ट्र बना दो, और अगर इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी उन्हीं के हाथ में होगी, उन्हीं के लोग होंगे, तो जाहिर है कि ये बहुत कम्युनल तरीके से किया जाएगा कि खासकर मुसलमानों को उसके बाहर कर दिया जाएगा और फिर बोला जाएगा कि भाई तुम लोग अब फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में अपील करो और फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल का हाल हम खुद देख रहे हैं। तो इसलिए ये एक बहुत ही खतरनाक चीज होगी और इसमें सारा ये कह दिया है कि भाई तुम लोग प्रूफ करो कि तुम लोग इंडियन सिटीजन हो और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स अपना बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट या ये प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स या स्कूल सर्टिफिकेट दिखाकर ये प्रूफ करो कि भाई तुम लोग हिंदुस्तान के सिटीजन हो और इतने पुराने डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने। तो ये तो जो गरीब आदमी है उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। पहले एक दूसरा एक्ट था इलीगल माइग्रेंट डिटर्मिनेशन बाय ट्राइब्यूनल एक्ट जिसमें ये कहा गया था कि ये प्रूव करना कि आप फॉरेनर हैं ये स्टेट का या सरकार का दायित्व होगा और वो एक जुडिशियल ट्राइब्यूनल तय करेगा। लेकिन अब तो बिल्कुल उल्टा कर दिया गया है कि आप प्रूव करिए और आप डॉक्यूमेंट से प्रूव करिए और उसमें भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक निकल आए तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आप ट्राइब्यूनल जाइए, ट्राइब्यूनल में जज भी नहीं होंगे, ट्राइब्यूनल का प्रोसीजर ऐसा होगा कि कई बार बगैर नोटिस के आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो अगर ये किया गया तो पूरे हिंदुस्तान में बिल्कुल हाहाकार मच जाएगा, खासकर गरीब आदमियों के लिए। और शायद यही ये मौजूदा सरकार चाहती है कि वे गरीब आदमी उनके तलवे के नीचे रहे, जिसको चाहे वो डिक्लेयर कर दें कि वे सिटीजन हो। वो कह रहे हैं कि भाई हम हिंदुओं को तो वापस ले आएंगे क्योंकि हम सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट करके और ये कह देंगे कि भाई हिंदुओं को तो सिटीजनशिप दे दी जाए, मुसलमानों को ना दी जाए।
लेकिन मैं यहाँ जैसे कि आपने भी कहा कि ये मामला सरकार के नहीं बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में ऐसा मुमकिन है कि इस तरह के फैसले किए जा सके?
सुप्रीम कोर्ट हर स्टेट में थोड़ी मॉनिटर करेगा, वो तो आसाम का एक स्पेशल केस था क्योंकि आसाम में पहले इन्होंने एक जजमेंट दे दिया कि वही इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्राइब्यूनल एक्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, फिर ये कह दिया कि एनआरसी होना चाहिए और फिर सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटर करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से आसाम के केस में ऐसा हुआ, लेकिन दूसरी जगह तो ये सब नहीं होगा, दूसरी जगह तो सरकार ही करेगी, स्टेट गवर्नमेंट ही करेंगी
जी। तो इस तरह की इससे पहले कोई मिसाल मौजूद है कि इस तरह का कोई वाकया हुआ? क्योंकि अगर मैं यहाँ देखूँ अमेरिका में तो एक शनाख्ती कार्ड है यहाँ पर, और इस तरह भारत के जो साथी जो एक मुल्क है पाकिस्तान उसमें भी शनाख्ती कार्ड है, तो क्या इंडिया में ये सिस्टम मौजूद नहीं कि कोई शनाख्ती कार्ड हो जिससे पता लग सके कि कोई शख्स कब पैदा हुआ, कब से रहता है इस मुल्क में, या और कोई आइडेंटिटी का और कोई तरीका नहीं है इसके अलावा ये जो एनआरसी शुरू हुआ?
नहीं, लोगों के पास अलग अलग आइडेंटिटी कार्ड होते हैं, कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता। अब वो कह रहे हैं कि आधार ज्यादातर लोगों के पास आ गया है आधार कार्ड, लेकिन
अच्छा,
किसी के पास राशन कार्ड होता है, किसी के पास कोई और डॉक्यूमेंट होता है, कोई स्कूल सर्टिफिकेट होता है। देखिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले गया था, एक केस हुआ था जिसमें इलेक्शन कमीशन ने बहुत लोगों का नाम वोटर्स लिस्ट से निकाल दिया था और फिर बोला था कि तुमको अगर वापस इंक्लूड कराना हो तो तुम ये डॉक्यूमेंट लेकर आओ, चाहे पासपोर्ट लाओ, बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, या ये दो चार और डॉक्यूमेंट्स बोले थे
जी।
सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये था कि क्या सिर्फ यही डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे या कोई जना कोई दूसरा एविडेंस भी प्रोड्यूस कर सकता है, कोई ओरल एविडेंस भी प्रोड्यूस कर सकता है ये दिखाने के लिए कि भाई वो हिंदुस्तान का ही नागरिक है और उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में ये बोला, 1995 का केस है, कि नहीं, इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह सकता कि हम सिर्फ यही 5-6 डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, कोई भी एविडेंस हो लाए, चाहे ओरल एविडेंस हो, मान लीजिए कोई गरीब आदमी उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है
जी,
लेकिन वो अपने नेबर्स का एफिडेविट ले आता है कि भाई हमने देखा है ये 50 साल से यहाँ रहता है, तो देयरफॉर वो आपको मानना पड़ेगा जब तक कि कोई उसको झूठा ना साबित कर दे।
अच्छा, तो आप सब हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ एक और मेहमान इस वक्त हैं, राकेश सिन्हा साहब हैं, बीजेपी के कौमी तर्जुमान हैं। तो राकेश सिन्हा साहब, खुशामदीद प्रोग्राम में आपको। और हमारे साथ इस वक्त प्रशांत भूषण साहब हैं, नताशा हैं, और एक एक्टिविस्ट है मासूमा जो गुवाहाटी में काम कर रही हैं लोगों के रजिस्ट्रेशन वगैरह में मदद करने के लिए। मैं भूषण साहब आपसे कहूंगी, आप थोड़ी सी देर से शामिल हुए हैं, तो अभी तक जो बात हुई तो ये हुई कि 19 लाख जो लोग हैं, शुरू में ऐसा लगता था कि इस मसले को काफ़ी इस तरह पोर्ट्रे भी किया गया था कि सिर्फ मुसलमानों का मसला है, लेकिन इस जो ज़्यादा बड़ी तादाद है वो गैर मुस्लिम आसाम के बाशिंदों की है जो कि फेहरिस्त में शामिल नहीं है। तो चूंकि आपकी हुकूमत सेंटर में तो है ही, लेकिन इसके अलावा आसाम में भी आप लोग बरसर इक्तदार हैं, तो आप लोग अब किस तरह इस मसले से डील करने का इरादा रखते हैं? क्योंकि एक एतराज़ ये भी है कि जो इब्तदाई नज़रसानी की जा रही है, जो लोग दरख्वास्तें दे रहे हैं, तो वो लोग उनका तकर्रुर जो है ज़्यादातर हुकूमत की सतह पर किया गया है।
ये प्रश्न मुझसे पूछा आपने?
जी जी सिन्हा जी, आपसे पूछा मैंने।
देखिए, एनआरसी के पीछे जो एक बेसिक एजेंशन है, मान्यता है, उसको समझना चाहिए। वो एजेंशन ये है कि एक लंबे समय तक असम में आंदोलन चला था, उस आंदोलन के बाद एक समझौता हुआ था, और समझौता के दौरान कांग्रेस सरकार थी। उस समझौते में ये हुआ था कि हम 1971 को बेस ईयर मानकर उसके बाद आने वाले जितने विदेशी घुसपैठिए उसको बाहर करें, और इसी के सिद्धांत के तहत, इसी प्रिंसिपल के तहत जो एग्रीमेंट पिछली सरकारों ने किया उस पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कदम उठाया
जी,
और एक स्टेप लिया, और उस स्टेप को लेते समय ये सारी प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के अधीन हुई है। इसमें सिर्फ दो बातें ही, जो लोग बिना किसी अनुमति का, बिना किसी गैर कानूनी तरीके से चोरी छुपके एक विशेष मोटिव से हिंदुस्तान की जमीन पर आए हैं, उनको आइडेंटिफाई कर
जी।
और वो प्रक्रिया चली, चूंकि एक लंबे समय तक उनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया, इससे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कानूनी पेचीदगियों के कारण और भ्रष्टाचार के तहत अपने डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर लिए, फेक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए। बहुत से लोग असम के पड़ोसी राज्य में माइग्रेट कर गए, और इसके बड़ी संख्या में जो घुसपैठिए हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं, वे इस एनआरसी में अभी नहीं आ पाए। इस एनआरसी को दो बातों के लिए आलोचना कही गई, ये मुसलमानों के प्रति एक दुर्व्यवहार और एक डिवाइजी पॉलिटिक्स के, मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स के तहत किया गया। अब जब एनआरसी का लिस्ट आया तो वही लोग दूसरी बात कर रहे हैं, यानी कि हिंदुस्तान में एक बुद्धिजीवियों का ऐसा वर्ग है जो कि अपने पूर्वाग्रह से प्रिजुडिसेस के आधार पर हुकूमत की आलोचना करता है। अब जो लोग कल तक क्या कह रहे थे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, अब उनकी आवाज बंद है, वे दूसरी आवाजें बोल रहे हैं। तो हुकूमत तो सुप्रीम कोर्ट के तहत, संविधान के प्रावधानों के तहत ऐसा कर रहा था, और एनआरसी में हम दो बातों ने, हमने और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसमें हम एक बात के लिए साफ तौर पर कह देना चाहते हैं, ये जो उपमहाद्वीप था वो पहले एक देश था, और उसका 3 बार विभाजन हुआ, और विभाजन के बाद जो लोग हिंदू उन देशों में रहे, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई समुदाय के लोग, उनके साथ लगातार भेदभाव ही नहीं हुआ, उनका दमन किया गया, और इस हद तक किया गया कि बांग्लादेश का जो लेटेस्ट सेंसस का डाटा था उसमें ये माना गया कि 11 मिलियन हिंदू मिसिंग हैं, और पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 1% से कम रह गई। बांग्लादेश में जो आबादी 23% थी वो लगभग 6, अभी कोई कंफर्म डाटा नहीं आ रहा है, लेकिन अनुमान है 6-7% के आसपास वो हैं। तो इन परिस्थितियों में उन सभी लोगों को जिन पर रिलीजियस प्रोसिक्यूशन होता है उसे भारत में नागरिकता दी जाएगी। ये भारत की पंथ निरपेक्षता की जो पुरानी परंपरा रही है, हमारी सनातन इटर्नल एक ट्रेडिशन रहा है, उसके तहत हम कर रहे हैं।
لیکن میں ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ ابھی آپ نے بات کی مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی, مثلاً روہنگیا مسلمان جو ہیں, جو جن کی تعداد یہاں پہ بھی پناہ لے رہی ہے, تو وہ تو ایک بالکل پوری دنیا مانتی ہے کہ ایک بہت بڑی ظلم و ستم کا شکار ہو کے برما میں یہاں آئے, تو کیا یہ پھر ان کے لیے بھی رعایت ہوگی, ان کو بھی شامل کیا جائے گا, ان کو بھی شہریت دی جائے گی؟
پرشن ریلیجیس پرسیکیوشن سے نہیں ہے. روہنگیا کا جو آندولن ہے وہاں پر, برما میں آندولن ہے, ان کی راشٹریتا کے خلاف وہ آندولن ہے, وہ راشٹریتا کا ٹکراؤ ہے, اور جو برمیز بدھسٹ ہیں ان پر روہنگیا کا ایک آتنکوادی حملہ ہے, اور وہ آتنکوادی حملے کے تحت جو ٹکراؤ ہے اس کے کارن اویدھ طریقے سے بھارت ان کا ریلیجیس پرسیکیوشن سے کوئی لینا دینا نہیں. ریلیجیس پرسیکیوشن ہے تو وہ بنگلہ دیش کے مارفت یہاں ہے, بڑی سنکھیا میں روہنگیا بنگلہ دیش کے مارفت آئے. اسے روہنگیا میں آتنکوادی گھٹنائیں گھٹتی ہیں, وہ اور روہنگیا کا بڑا ورگ ریڈیکل اسلام سے جڑا ہوا ہے. ہم اس بات میں صاف ہیں کہ روہنگیا مسلمانوں کو بھارت میں ایک انچ اور ایک روہنگیا مسلمانوں کو جگہ نہیں دی جائے گی. دیکھیے دنیا کے جتنے ملک ہیں, یوروپ جس کو لبرل ڈیموکریسی مانا جاتا ہے, اور واشنگٹن پوسٹ جو اخبار امریکہ سے چھپتا ہے, وہاں پر پانچ بھارتیہ الیگل چلے جائیں تو کیا ان کو جگہ ملے گی؟ پورے یوروپ میں مائگرینٹس کے اوپر ایک ڈسکشن چل رہا ہے جو لیجیٹیمیٹ
نہیں. بالکل سنہا جی, بالکل درست آپ نے فرمایا, اسی لیے تو میں نے پوچھا, کیونکہ آپ نے بات کی کہ دنیا میں جہاں جہاں کچھ آپ نے مذاہب کا نام لیا کہ ان لوگوں پر اگر ظلم ہو رہا ہے وہاں پر تو ہم انہیں پناہ دیں گے, اس لیے میں نے پوچھا آپ سے کہ یہ کوئی اوپن پالیسی.
میں نے وہ نہیں کہا, میں نے کہا پانچ, جہاں جہاں اگر مسلمانوں کے ساتھ عرب دیش میں ہوگا تو ہم نہیں دیں گے, ان کے پاس بہت سے دیش ہیں, لیکن جیوز کے ساتھ جو جین ہیں, بودھ ہیں, ہندو ہیں, ان کے پاس دنیا میں کوئی کہا جائے وہ بھارتی, یہ لوگ دیکھتے ملتا ہے, یہ بھارتی مہادیپ کے لوگ, یہ بھارت ورش کے لوگ, یہ پارٹیشن کے کارن پاکستان اور بنگلہ دیش بنا, پارٹیشن کے کارن انہوں نے اس کو مدر لینڈ مانا ہے, اور اس کو اتنے سطحی طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے. جب پارٹیشن ہوا تو نہرو لیاقت پیکٹ ہوا, جو پیکٹ غلط پیکٹ تھا, وہ نہرو دو ویکتیوں کا پیکٹ تھا, کیبنٹ کا سینکشن نہیں تھا. اسی پیکٹ کے تحت جو ہندو پاکستان چلے گئے ان کو آرفن اناس چھوڑ دیا گیا, اور لگاتار ہوتا رہا. آپ کو میں ایک چیز یاد دلا دوں, جے این منڈل پاکستان کے پہلے لا منسٹر تھے, یو آر دی فرسٹ لا منسٹر آف پاکستان, اور وہ جنہ کے ویکتی دوست بھی تھے, مسلم لیگ کے ساتھ ان کا لمبے سمے تک سمجھوتا تھا بنگال میں, اور پارٹیشن کے سمے انہوں نے مسلم لیگ کا پورا تن من دھن سے سہیوگ کیا, اور جب وہ لا منسٹر تھے انتتہ ان کو دو سال کے اندر لا منسٹر سے استعفیٰ دینا پڑا, اس لیے نہیں کہ ان کے ادھیکار چھین لیے گئے, اس لیے کہ پاکستان میں جو دلت سمودائے کے لوگوں کے ساتھ, شیڈول کاسٹ کے لوگوں کے ساتھ اتنا دھرم ان کا کنورجن, دھرمانترن, ان کی مہیلاؤں پر ڈگنیٹی پر اٹیک, اور ان کی ہتیائیں, ان کی سمپتی کو لینا لگاتار ہوتا رہا, تو انہوں نے کہا کہ میرا ضمیر ساتھ نہیں دے رہا ہے کہ میں جھوٹ بولوں کہ پاکستان میں سب کچھ ٹھیک ہے, اور ستا کو تیاگ کر کے پھر بھارت.
میں صرف ایک درخواست کروں گی آپ سے کہ اس وقت کیونکہ ہمارے پاس, ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی پروگرام ہو, ہم جو بھی ڈسکشن کریں, ہم اس میں دوسرے پارٹی کو بھی موقع دیں, کیونکہ ہم اس وقت پاکستان اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے, تو ہم صرف این آر سی پہ توجہ اپنی مرکوز رکھیں گے, اور آپ ہمارے ساتھ رہیے. میں ابھی تک جو بات ہوئی اس پہ
ایک 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 پنکتی بول دوں گا. آپ نے جو کہا این آر سی کا سوال, تو اس لیے اٹھتا ہے, این آر سی کوئی ویکیوم میں نہیں آیا, رکتتا سے نہیں آئی ہے. این آر سی کا سوال اس لیے اٹھا ہے کہ بڑی سنکھیا میں پاکستان سے جو بنگلہ دیش الگ ہوا, وہاں سے ہندو بھی آئے اور مسلم بھی آئے, کچھ مسلم گھس بیٹھیے بن کر آئے, اور ہندو کو ریلیجیس پرسیکیوشن کے کارن آئے. ان دونوں کے پورے این آر سی کو آپ پاکستان اور بنگلہ دیش کی گھٹناؤں سے آپ الگ تھلگ کر کے نہیں دیکھ سکتے ہیں, یعنی دیکھتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ جسٹس نہیں کر پائیں گے ہم اس ڈیبیٹ کے ساتھ.
نہیں ٹھیک ہے, آپ نے آگے آپ نے جو اپنا ورژن دیا وہ بالکل ہم سب نے سنا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت جو لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے اس کو بالکل ہندو اور مسلمان کے طور پہ پیش نہیں کیا. ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت ہی بالکل غربت, یا تو غریب ہیں یا غربت کی جو سطح ہے اس سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں, تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے, تو ان کے لیے ان تمام قانونی چیزوں کو سمجھنا, فارمز بھرنا, جانا ٹریبیونل میں, درخواستیں دینا ان کے لیے مشکل ہے. تو اس لیے میں وضاحت کر رہی ہوں اس بات کی کہ اس کو ہم ڈسکس ہی نہیں کر رہے, کیونکہ جیسے کہ آپ نے کہا صحیح کہا کہ اس میں بڑی تعداد تو غیر مسلموں کی ہے جو لسٹ ہے, 19 لاکھ ہیں. میں اس وقت بھوشن جی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اب تک جو بات ہوئی سنہا صاحب سے, تو آپ اس میں کچھ کہنا چاہیں گے؟
देखिए ये कह रहे हैं कि जो गैर मुस्लिम समुदाय है उन सबको सिटीजनशिप दे दी जाएगी क्योंकि वो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन से यहाँ आए हैं, जो लोग जिनको एनआरसी में नहीं रखा गया है। तो सवाल ये है कि आप रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं क्या? अगर कोई मुसलमान बाहर से आया है प्रोसिक्यूशन की वजह से, रेफ्यूजी बन के आया है, जैसे ये रोहिंग्या हैं, इनके इनको ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो आतंकवादी हैं, जब यहाँ एक जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली में ये सवाल पूछा गया तो इन्हीं की सरकार ने जवाब दिया कि एक केस भी रोहिंग्या के किसी भी रेफ्यूजी के खिलाफ टेररिज्म या कोई भी सीरियस ऑफेंस का आज तक नहीं लगा है, लेकिन फिर भी ये लोग, ये भाजपा वाले लोग कहते हैं कि ये तो मुसलमान है इसलिए सब आतंकवादी हैं। और सारे यूएन एजेंसीज ने, यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, यूएन कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट, सारे इंटरनेशनल एजेंसीज ने बोला है कि रोहिंग्या का जिस तरह से वहाँ बर्मा में परसिक्यूशन प्रोसिक्यूशन और जेनोसाइड हुआ है, ऐसा इतिहास में शायद कभी कहीं नहीं हुआ, किसी भी देश में नहीं हुआ। तो इनसे ज्यादा दयनीय रेफ्यूजीज तो कभी दुनिया में हुए ही नहीं। और उसके बारे में ये सिन्हा साहब ये कह रहे हैं कि एक इंच भी उनको जमीन नहीं देंगे। तो भाई आपका क्या वो है कि आप ये कह रहे हैं कि जितने गैर मुस्लिम समुदाय के लोग जो हिंदुस्तान में आ गए हैं उनको तो हम सबको शरण यहाँ दे देंगे, सिटीजनशिप भी दे देंगे, लेकिन कोई मुसलमान को, क्योंकि हम सब मुसलमानों को आतंकवादी मानते हैं, इस वजह से हम किसी को एक इंच भी जगह नहीं देंगे, चाहे वो कितना भी सताया हुआ हो, जिसके खिलाफ जेनोसाइड हुआ हो, जो सारे महिलाएं और बच्चे आए हों। मतलब ये क्या मानसिकता है, किस तरह की मानसिकता के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आता कि मतलब इसमें कोई मानवता है ही नहीं।
मैं सिन्हा साहब यहाँ एक बात और पूछना चाहूँगी कि डिटेंशन सेंटर हैं, मेरे ख्याल 5-6 आसाम में अभी मौजूद, और वो पहले से हैं, आपकी सरकार से पहले से भी हैं, तो मज़ीद आप लोगों ने काफ़ी प्लान किया है कि बहुत बड़ी तादाद में इजाफा किया जाएगा, तो इसकी क्या वजह है कि आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग गैरकानूनी करार पाएंगे, यानी इस इजाफे की क्या वजह है? सिन्हा जी, मेरा ख्याल है राकेश सिन्हा साहब आपको आवाज आ रही है मेरी,
रखने में मुश्किल करता है। देखिए पाकिस्तान में एनमी प्रॉपर्टी एक्ट है और बांग्लादेश में रिस्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी एक्ट है, इसका मतलब समझना चाहिए। एनमी प्रॉपर्टी एक्ट और रिस्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी एक्ट वहां के हिंदुओं पर लागू किया गया, उनके धर्म स्थानों, उनकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। बांग्लादेश में 85% हिंदुओं की सारी संपत्ति जमीन जब्त कर ली। यदि इस अंतर को कोई नहीं समझे और इतनी अज्ञानता रखे तो फिर तो मानवता के नाम पर आप कुछ करते रहिए। और जिनको मानवता सोचता है वो अपनी जमीन दे दे, अपने घर में रोहिंग्या को रख लें, हम तो रोहिंग्या को नहीं रखेंगे। रोहिंग्या को रेडिकल, वो रेडिकलाइज हैं, वो भाग कर आए हैं, वहाँ संघर्ष कर रहे हैं, गलत तरीके से आए हैं। जो हिंदू सिख ईसाई और बौद्ध जैन अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश से आए उन्हें भारत में नागरिकता दे दी जाएगी। ये पहले भी कांग्रेस की सरकारों में को नागरिकता दी जा रही थी, धीरे धीरे दी जा रही थी, थोड़ी मां अब हमने कह दिया जिसका रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो उसको देंगे, क्योंकि वो हमारे हिस्से रहे, उसके पास दूसरा कोई जगह नहीं। दूसरी बात है यूरोप के जो माइग्रेंट्स जा रहे हैं उन पर डिस्कशन नहीं हो रहा है, जो माइग्रेंट्स पर डिस्कशन नहीं हो रहा है। मानवता का सवाल तो हम रखते ही हैं, ज्यूज आए उनको रखा, पारसी आए उनको रखा, लेकिन वो आकर भारतीय सभ्यता संस्कृति के अभिन्न हिस्से बनकर रहे। जो लोग मानवता की बात करते हैं वास्तव में उनको जानकारी ही नहीं है कि रोहिंग्या एक आंदोलन के बारे में यूनाइटेड नेशन ने क्या कमिटमेंट किया है। वहाँ जिनोसाइड, वो बर्मा की म्यांमार की घटना एक अलग बात है, लेकिन उसके अतिरिक्त क्या कमेंट हुआ रोहिंग्या आंदोलन के बारे में, रोहिंग्या आंदोलन के रेडिकलाइजेशन के पक्ष पर क्या कहा गया, एक पक्षीय बात नहीं करनी चाहिए। जो रोहिंग्या भारत आए हैं वो क्यों आए, किसके मार्फत से आए, किस प्रकार आए, सरल लेने का, रिफ्यूजी बनने का एक अलग क्राइटेरिया पैरामीटर्स थे, और उस पैरामीटर्स में आप नहीं आए हैं। जो दुनिया भर में प्रोसिक्यूशन होगा तो हम करोड़ों लोगों को भारत में रख लेंगे, जहां जहां प्रोसिक्यूशन होता है दरवाजे खोल देंगे, हम तो उन्हीं को भारत में जगह देंगे जो भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से थे, जहां रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुआ, रिलीजियस जहां पर एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट लगा, कन्वर्जन हुआ, महिलाओं की डिग्निटी पर अटैक हुआ। पाकिस्तान में आए दिन वहाँ की महिलाओं, हिंदू और सिख महिलाओं को अपहरण किया जा रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है, और ये जनाब कौन है जो कह रहे हैं कि क्या कुछ भी नहीं हो रहा है?
नहीं तो हम लोग पाकिस्तान की बात में फिर आपसे कहूंगी कि पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं आज की इस बहस में।
क्यों नहीं होगा?
नहीं, आपने
पाकिस्तान बांग्लादेश से ही जुड़ा हुआ मामला है,
नहीं
से लोग आए वहीं से,
नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उस लिहाज से
मसलन
मैं ये किस लिए ये बात कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ
पाकिस्तान बांग्लादेश को क्यों हटा देना चाहती है, आखिर घुसपैठिए आए कहाँ से?
नहीं,
और हिंदू जो माइग्रेट करके आए हैं वही आज जोधपुर में राजस्थान के एवं अन्य भागों में जो कैंप में पिछले कई सालों से रह रहे हैं वो कौन लोग हैं? पाकिस्तान से प्रोसिक्यूशन होकर आए हैं, जिनको नागरिकता नहीं दी गई, वोटिंग राइट नहीं दिए गए, न्यूनतम सुविधाएं नहीं दी गई।
मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप, मैंने सिर्फ आपसे ये कहा कि क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाला कोई आदमी हमारे प्रोग्राम में मौजूद नहीं है।
पाकिस्तान नुमाइंदे
नहीं, इसकी वजह ये है कि वो उसकी ज्यादा बेहतर
सवाल नहीं है। आप यदि बहस कर रही हैं तो बहस में आपको पाकिस्तान से
नहीं, ये तो प्रशांत जी ने बहस नहीं की, प्रशांत जी ने सिर्फ अपना
वाशिंगटन पोस्ट को मालूम नहीं है क्या पाकिस्तान रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा है? हम अभी एक हिंदू महिला का अपहरण हुआ, एक सिख महिला का अपहरण हुआ, उसका धर्मांतरण हुआ, इमरान खान को बोलना पड़ा उस पर।
बात सुनिए, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगी कि अभी वॉशिंगटन पोस्ट के सामने बहुत बड़े मुजाहरे किए इंडियन कम्युनिटी ने, और इसलिए कि उसी अखबार ने ये रिपोर्टिंग शाया की नहीं कश्मीर में जो सूरत हाल है। तो ये जरूरी नहीं है कि एक अखबार जो भी कह रहा है, हम तो इस वक्त जो बात कर रहे हैं
उसके सामने प्रदर्शन भी हुआ है बायस रिपोर्टिंग के कारण, वाशिंगटन पोस्ट भारत के।
अच्छा, तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बाकी है, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था।
मैं अपनी आपत्ति दर्ज करता हूँ वाशिंगटन पोस्ट के लिए कि वाशिंगटन पोस्ट ने बायस रिपोर्टिंग की है, भारत को प्रेजुडिस नजरों से देखता है, और हमारी आपत्ति दर्ज कीजिए
जी। लोकतंत्र मैंने आपसे सिर्फ सवाल ये पूछा था जिसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला कि ये जो डिटेंशन सेंटर अब मजीद कायम हो रहे हैं, जाहिर एक महंगा काम भी है कि अगर ये सैकड़ों की तादाद में बनेंगे तो इसकी क्या वजह है, सब क्यों इतने ज्यादा डिटेंशन सेंटर प्लान कर रहे हैं आप लोग आसाम में?
नहीं, इसका कारण है ना, इसका देखिए, ये सभी आप लोग का मतलब कोई ये इसको बीजेपी से जोड़ने की कोशिश मत कीजिए, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने जैसा निर्देशित किया है एनआरसी के तहत उसी की तरह से डिटेंशन कैंप बन रहा है, ये सर्वोच्च न्यायालय इसको निर्देशित कर रहा है, कोई आइडियोलॉजी और सरकार का जो एक अंग है जुडिशियरी उसके निर्देशन में ही सब कुछ हो रहा है। कुछ कमियां हैं तो उसको दूर करने का काम सर्वोच्च न्यायालय कर रही है, एग्जीक्यूटिव इससे पूरी तरह से बाहर, एग्जीक्यूटिव सिर्फ एग्जीक्यूशन उतना ही पार्ट कर रहा है ये जो सर्वोच्च न्यायालय निर्देशित कर रहा है।
अच्छा, तो मैं यहाँ नताशा से पूछना चाहूंगी, नताशा चूंकि फिल्म मेकर है, तो नताशा आपने कभी ये जो इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं जो मौजूद है डिटेंशन सेंटर कई सालों से, कभी आपने वहाँ बात की लोगों से कि वहाँ क्या सूरत हाल है, खानदान जो एक जगह रहते हैं या अलग अलग रहते हैं, यानी उनको क्या सहूलतें हैं जो लोग उन सेंटर्स में रखे जाते हैं, और फिर ये कि रेशो क्या है आखिर में उनके मुकदमात का, जब कभी फैसला होता है तो वो सही निकलते हैं उनके कागजात या गलत निकलते हैं? नताशा,
डिटेंशन सेंटर्स के हालात तो बहुत ही ज्यादा खराब हैं, वहां पे हर किस्म की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं। भारत ने खुद जितनी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज में सिग्नेचर किए हुए हैं, भारत के अपने जो रूल्स हैं कि अगर जेल में किसी को रखा जाता है तो कितना उनको एक्सरसाइज का टाइम मिलना चाहिए, कितना आउटडोर टाइम, इनडोर, किस तरह का खाना, किस तरह के स्लीप कंडीशंस होने चाहिए, डिटेंशन सेंटर्स में ये सारे के सारे रूल्स जो हैं वो ब्रेक किए जा रहे हैं। अगर किसी की मौत होती है तो उसकी घर वालों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं मिलती
जी।
इतने ज्यादा बुरे हाल हैं, और ये कई फिल्मों में इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स के द्वारा देखा गया है। हर्ष मंदर जी जो सुप्रीम कोर्ट के रेपर्टुआर है वो खुद गए थे, उन्होंने आके बताया है। तो और ये तब हाल है जबकि पूरे असम में 1000 लोग डिटेंशन कैंप्स में हैं, और आज बात हो रही है कि 19 लाख लोगों के नाम एनआरसी में नहीं आए। अब वो एक रीवेरिफिकेशन प्रोसेस होगा, 19 लाख कितना कम हो जाएगा, अगर लाख भी रह जाता है तो कहाँ इन लोगों को रखा जाएगा, क्यों इन लोगों को रखा जाएगा सालों साल तक डिटेंशन कैंप्स में, जब कोई देश इनको लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये यही पैदा हुए हैं, ज्यादातर लोग भारत में पैदा हुए हैं, कोई और देश इनको क्यों लेगा। तो बिल्कुल ही कोई लॉजिक नहीं है, कोई आगे की बात सोची नहीं गई है कि हम इसको किस मकाम तक पहुंचाना चाहते हैं जो प्रोसेस हमने शुरू कर दिया है। और अभी से बातें कि हम और स्टेट्स में लेके जाएंगे, जैसे कि प्रशांत भूषण जी ने कहा, ये जो मानसिकता है इसमें कोई मानवता नहीं है, और ये सिर्फ सिर्फ देश में लोगों में एंग्जाइटी क्रिएट करने के लिए, एक इनसिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए, और जो पीस ऑफ माइंड है आज वो सिटीजन्स में खत्म हो जाए। तो ऐसी कौन से लीडर्स हैं, कौन सी सरकार है जो खुद ही अपने लोगों के इतना ज्यादा खिलाफ काम कर सकती है, ये अपने आप में बहुत ही दर्दनाक बात है। और राकेश सिन्हा जी को जो सुना है, जिस तरह से इन्होंने फॉल्स फैक्ट्स बोले हैं, जिस तरह से ये फेक न्यूज पेगी कर रहे हैं, जो भी इनको मन घड़त बोलना है किसी और कम्युनिटी के बारे में बोलते चले जा रहे हैं, तो इस तरह तो कोई डिबेट नहीं हो सकती, कोई डिस्कशन नहीं हो सकती, कोई पॉलिसीज इस तरह की मानसिकता से नहीं बनाई जा सकती। तो सिटीजन्स का जो रेजिस्टेंस है वो बनाए रखना है, और जैसे कि भूषण साहब ने बताया, पीपल्स ट्राइब्यूनल एक हुआ है इस वीकेंड पर भी दिल्ली में, और कई और स्टेट्स में एनआरसी पर डिस्कशंस हो रहे हैं, और ये डिस्कशन लोगों में हो रहे हैं। अब सिविल सोसाइटी उठकर आपस में बात कर रही है कि हम लोग देख रहे हैं कि जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, और हम लोग इसके बारे में क्या कर सकते हैं, वो हम मिलके एकजुट होकर करेंगे।
तो मैं
के लोग भी, अफेक्टेड लोग भी, लॉयर्स भी और इंटेलेक्चुअल।
एक और आपने मुझे बताया कि एक मूवमेंट जो शुरू हुई है, एक शायरी की मूवमेंट, एक मियां पोएट्री के नाम से, मुख्तसरन चंद मिनट है हमारे पास, उसके बारे में बताइए।
तो मियां पोएट्री, मियां एक शब्द है, जैसे कि आप जानती हैं उर्दू में जब हम रिस्पेक्ट से किसी से बात करना चाहते हैं तो उन्हें मियां कह के बुलाते हैं, और लेकिन किसी भी मुसलमान को मियां कहना और उसको इस तरह से कहना जैसे कि वो गाली है, कि मियां होने का मतलब है कि तुम अनपढ़ हो, तुम इलीगल माइग्रेंट हो, तुम गरीब हो, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, इस तरह से इस वर्ड का इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है। कई नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में इसका प्रचलन बहुत ज्यादा है, और स्टेट्स में भी अक्सर हुआ है। अगर आप मुसलमानों से सुनेंगे तो सब हंस के कहेंगे कि हाँ, कभी ना कभी किसी ने इसको गाली की तरह हमें इस्तेमाल किया है। तो ये एक यंग लोगों की मूवमेंट है, एक लिटरेरी मूवमेंट है, जहाँ पर और मासूमा भी जो इस शो पर हमारे साथ मौजूद है वो इसकी पार्ट है, जहाँ पे कई लोगों ने अपनी लैंग्वेज में, अपनी जिसको डायलेक्ट कहा जाता है, अपनी डायलेक्ट्स में पोइट्री लिखनी शुरू की है, जिसमें कि वो अपने दिल की बात सामने रखते हैं, जिसमें कि वो अपने उस दर्द को एक्सप्रेस करते हैं कि जिस जहाँ हम पैदा हुए हैं, जहाँ हमारे पूर्वज इतने सालों से रह रहे हैं, जिस धरती को हमने इतना मान सम्मान प्यार दिया है, जहाँ फ्लड आते हैं उसके बावजूद हम उसको छोड़ने को तैयार नहीं है, वहाँ आज हमको आउटसाइडर बताया जा रहा है, वहाँ हमारे लिए इतनी कम हमारी वजूद की रिस्पेक्ट है।
हमने अशरफ को भी लिया था नताशा,
कई पोएट्स ने एक्सप्रेस किया है।
मुझे जैसे कि आपने बात की, मैंने अशरफ और मासूमा दोनों खुद भी पोएट्री लिखते हैं, अशरफ इत्तेफाक से दोनों का रابطہ खत्म हो गया। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि अशरफ ने मुझे बताया कि बहुत से गैर मुस्लिम भी यही, लेकिन जो आसामी है वो इस तरह की नज़में लिख रहे हैं, तो सही है ये बात?
ये बिल्कुल सही है। पोइट्री बहुत एक पावरफुल मीडियम है, जब और ये जो पूरा मियां पोइट्री का मूवमेंट है, ये शुरू ही ऐसा हुआ, एक पोएम लिखी गई फेसबुक पर, उसके जवाब में दूसरी लिखी गई, उसके रिएक्शन में तीसरी लिखी गई, और एक ने दूसरे को इंस्पायर किया है। और अगर देखा जाए तो जो अदरिंग है वो सिर्फ एक कम्युनिटी तक नहीं का एक्सपीरियंस नहीं है, अदरिंग तो औरतों के साथ भी हुआ है, दलितों के साथ भी हुआ है, हर एक जगह जहां मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में पावर का इम्बैलेंस है
जी, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी नताशा, क्योंकि बिल्कुल चंद सेकंड बाकी हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। हम बात कर रहे थे आसाम में एनआरसी के बाद की सूरत हाल और मुजमरात पर। इसके साथ ही शहनाज अज़ीज़ साहब से इजाजत चाहेगी, खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
वॉइस ऑफ अमेरिका ने अमरीकी अवामी नुमाइंदगान की नई मुंतखब रुकन केटी पोर्टर के पहले साल का जायजा लिया है, जो रियासत कैलिफोर्निया की 45वीं डिस्ट्रिक्ट यानी हल्के से ताल्लुक रखती हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोजेक्ट क्लाइंबिंग द हिल में कांग्रेस में उनके पहले साल की मुश्किलात और कामयाबियों का जायजा लिया गया है। इस रिपोर्ट में हम आपको केटी पोर्टर के रुकन कांग्रेस मुंतखब होने तक के सफर का अहवाल आपको बताएंगे। बहुत सों के लिए रियासत कैलिफोर्निया अपने साहिलों और चमकती धूप के लिए जानी जाती है। तवील अरसे से इसका शुमार अमेरिका की आज़ाद ख्याल रियासतों में होता है, लेकिन अगर आप बहरुल काहिल से जमीनी इलाकों पर 20 मिनट तक हवाई सफर करें तो एक ऐसे कदामत पसंद इलाके में पहुंचेंगे जहां कुछ ऐसा हुआ जिसने तजर्बेकार सियासतदानों को भी हैरान कर दिया। पोर्टर कहती हैं, पहली बार ऐसा हुआ कि मैं किसी के पास गई और कहा मैं कांग्रेस की नौ मुंतखब रुकन केटी पोर्टर हूँ। ये बहुत अजीब तजर्बा था। केटी पोर्टर के साथ यह रहने वालों के लिए भी ये तजर्बा अजीब ही था, क्योंकि केटी पोर्टर एक डेमोक्रेट हैं और उनके कदामत पसंद और रिपब्लिकन आबाई हलके ने तारीखी तौर पर 1983 से अब तक किसी डेमोक्रेट को मुंतखब नहीं किया। केटी पोर्टर कहती हैं,
so we swung this district 22 points, which is really rare.
हमने इस रियासत में 22 पॉइंट से फतह हासिल की, जो अपनी तर्ज की गैर मामूली तब्दीली कही जा सकती है। आयोवा के किसान घराने से ताल्लुक रखने वाली इस लड़की ने ये सब कैसे किया और कैसे अपनी जमात और ज़राए ब्लाग में एक उभरता हुआ रोशन सितारा बन गई? इसका एक सीधा सा जवाब है। केटी पोर्टर येल और हार्वर्ड से फारगुत तहसील हैं और इरविन कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में कानून की साबिक प्रोफेसर रह चुकी हैं। इनकी इंतखाबी मुहिम को ये क्रेडिट जाता है कि इसकी वजह से वोटर्स की तादाद 2 से बढ़कर 30% तक पहुंच गई। ऑरेंज काउंटी के एक रजिस्टर वोटर आंद्रे मॉचर्ट कहते हैं, ये बाएं बाजू की जानिब झुकाव रखने वाले नौजवानों को आगे ला रही हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पोर्टर शुरू में इस जानिब आना नहीं चाहती थी, लेकिन सन 2016 के सदारती इंतखाब में वो हल्के में रिहाइश के मामले पर काम करने के लिए सदारती उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन की टीम में शामिल होने के लिए तैयार थीं। ताहम इंतखाबात के बाद और तब्दीली की चाह ने उनका रुख सियासत की जानिब मोड़ दिया। वो कहती हैं, सदर ट्रंप की जीत से कबल मैंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था। यू पोर्टर ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ कांग्रेस में तारीखी तनवो का हिस्सा बनी, जिसमें डेमोक्रेट्स की अक्सरियत थी और जिसमें 25% खवातीन थीं, जो अमरीकी तारीख में अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। लेकिन अमरीकी आबादी के तनासुब से ये फिर भी कम है। ऐवान नुमाइंदगान के इस रुकन ने अपनी 45वीं सालगिरह पर हलफ उठाया।
They cut the cake immediately when I got
जब मैं यहाँ पहुँची तो फौरन ही उन्होंने केक काटा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सेनेटर वॉरन ने बजाते खुद आकर मुझे सालगिरह की मुबारकबाद दी। सेनेटर एलिजाबेथ वॉरन हार्वर्ड में पोर्टर की साबिका प्रोफेसर थीं और अब वो सदारती उम्मीदवार हैं। जनवरी में मुंतखब होने वाली केटी पोर्टर की इससे कबल अपनी रियासत से बाहर कोई खास पहचान नहीं थी, लेकिन अगले ही माह उनके सवाल करने के अंदाज ने उन्हें नुमाया कर दिया। उन्होंने सवाल पूछने के अपने चुभते हुए अंदाज से शोहरत पाई। केटी क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी इक्विफैक्स के सीईओ से कुछ यूं मुखातिब हुईं,
व्हाई आर योर लॉयर्स आर्ग्यूइंग
विभाग की अदालत में आपके वकील ये क्यों कहते हैं कि आपके आदादोशुमार की खिलाफ वर्जी से कोई नुकसान नहीं पहुंचा? सीईओ कहते हैं, कांग्रेस वुमेन, हमारे वकला जो कुछ कह रहे हैं इसके बारे में कुछ कहना मेरे लिए मुश्किल है। पोर्टर ने जवाब दिया,
यू डू एम्प्लॉय दोस लॉयर्स,
सर माफ कीजिएगा, ये वकील आपके ही मुलाजिम हैं। और फिर कहने लगी कि आप फेडरल जज से दरोगोई कर रहे हैं, मुझसे या कांग्रेस से। जिरा करने का ये अंदाज कांग्रेस की समातों में काफी मुअसर साबित होता है, जहां हर रुकन को सवाल करने के लिए 5 मिनट का वक्त दिया जाता है। उन्होंने ये अंदाज हार्वर्ड लॉ स्कूल में अपने उस्ताद और मौजूदा सदारती उम्मीदवार एलिजाबेथ वॉरन से सीखा। चुभते हुए सवालात ने न सिर्फ ऐवान की कायदत की तवज्जो उनकी जानिब मबजूल की, डेमोक्रेट्स की आवाज के तौर पर भी उन्हें एक अलग पहचान मिली। इसके अलावा हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के साथ ट्विटर पर इस मुतनाज़े ऐलान ने भी उन्हें शोहरत दिलाई। वो कहती हैं,
I've decided to support an impeachment investigation.
मैंने सदर के मुआवजे की छानबीन की हिमायत का फैसला किया है। ये फैसला आसान नहीं था। अपने पहले साल में नए अरकान अपने खानदान और नई जिम्मेदारियों के दरमियान गोया तवाजुन की जंग लड़ते गुजारते हैं। केटी पोर्टर हर वीकेंड पर हवाई सफर करके मुल्क के दूसरे किनारे पर वाके अपने घर जाती हैं। वो कहती हैं,
I have three wonderful children.
मेरे तीन बच्चे हैं, ल्यूक, पॉल और बेट्सी। सबसे बड़ा बच्चा 13 बरस का है। बच्चे कैलिफोर्निया में रहते हैं, जबकि केटी तलाक याफ्ता हैं। वो कहती हैं, ایسا نہیں کہ بچوں کی دیکھ بھال میں مجھے مشکل پیش نہیں آتی، لیکن اس وقت یہ مختلف ہوتا ہے جب آپ ایک ایسی نوکری کر رہے ہوں جس میں آپ کو کئی مرتبہ ہزاروں میل کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ یہ حواس باختہ تو کر دیتا ہے، آپ جانتے ہی ہیں کہ اس جاب میں یہ سب ہوتا ہی ہے۔ نو منتخب ارکان کے لیے پہلے سال یہ فیصلہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے کہ مہنگے شہر واشنگٹن میں رہائش کہاں رکھیں۔ کیٹی کرائے کے ایک کمرے کے اپارٹمنٹ میں رہتی ہیں۔ اس کا باتھ روم اور کچن بہت ہی چھوٹا ہے۔ اس صوفے کو میں بیڈ کے طور پر استعمال کرتی ہوں۔ جب میرے بچے آتے ہیں تو ہمارے پاس سونے کو یہی ایک کھلی جگہ ہوتی ہے، یا پھر ہم باہر چلے جاتے ہیں۔ کیٹی کہتی ہے کہ جلد ہی وہ یہ فیصلہ کریں گی کہ دوسرے سال میں کیا وہ کیلیفورنیا سے اپنے بچوں کو یہاں منتقل کریں یا نہیں۔ سادیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ۔